लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। मनुष्य यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो, इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नव जीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के 7 से लेकर 12 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक परामर्श देता है, बुराई को दूर रखने और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी का परामर्श लेखक देता है। सर्वप्रथम तो वह कहता है कि अपने आप को बुद्धिमान समझ लेना और सब कुछ मान बैठना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यह उसका भ्रम है कि वह सर्वज्ञाता है, क्योंकि सर्वज्ञाता तो केवल ईश्वर है। मनुष्य का ज्ञान तो अंश मात्र है, वह समुद्र के पानी की एक बूंद मात्र है। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जब मनुष्य अपने थोड़े से ज्ञान से संतोष कर लेता है तो उसका झूठा आत्म संतोष खतरे को पास बुलाता है, क्योंकि उसका झूठा आत्म संतोष उसका विकास रोक देता है, वह उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि जितना ज्ञान उसके पास है वही काफी है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, जबकि ज्ञान का भंडार तो अपरिमित है। श्रोताओ, सच तो यह है कि जब व्यक्ति स्वतः पर निर्भर हो जाता है और किसी की परवाह नहीं करता, तब केवल निराशा ही उसके हाथ लगती है। अपने अभिमान में वह विनम्र होना भूल जाता है और जो थोड़ा बहुत ज्ञान उसमें होता है उसी पर गर्व करने के कारण यह भी भूल जाता है कि उसका ज्ञान ईश्वर की देन है, वह मनुष्य के प्रति ईश्वर की उदारता का फल है। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ के लेखक का परामर्श है, अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो, इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नव जीवन मिलेगा। श्रोताओ, यदि व्यक्ति स्वच्छ साफ सुथरा रहता है तो वह बीमारियों से दूर रहता है। उसी प्रकार साफ सुथरा आचरण व्यक्ति के अंतःकरण को स्वच्छ रखता है, उसमें दोषी या कसूरवार होने की कोई शंका नहीं उठती और इसीलिए चैन से सो पाता है।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
आगे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय में प्रज्ञा को जीवन वृक्ष घोषित किया गया है। इस अध्याय के 13 से लेकर 20 तक के पदों में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिली है, जिसने विवेक पा लिया है। उसकी प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है, उसका मूल्य मोतियों से बढ़कर है। तुम्हारी कोई भी अनमोल वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश हैं। उसके मार्ग रमणीय हैं और उसके सभी पथ शांतिमय। जो उसे प्राप्त करते हैं उनके लिए वह जीवन वृक्ष है। प्रभु ने प्रज्ञा से पृथ्वी को स्थापित किया, उसने विवेक से आकाश को सुदृढ़ किया, उसके ज्ञान से पानी महागर्त से फूट निकला और ओस बादलों से टपकने लगी। धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिली है। श्रोताओ, राजा सुलेमान अपनी बुद्धिमानी के लिए विख्यात था और उसकी उत्कट अभिलाषा थी कि उसकी सभी संतानें और जो लोग भी इन पदों को पढ़ें वे प्रज्ञा की खोज करें, उसकी तलाश में निकलें और उसे पालें, वे विवेकपूर्ण ढंग से अपने रास्तों का चयन कर सकें, क्योंकि केवल प्रज्ञा विवेक और समझदारी ही स्त्री पुरुषों को यथार्थ सुखमय जीवन की ओर प्रशस्त कर सकती हैं। वस्तुतः धन्य का शाब्दिक अर्थ है ईश नियमों के अनुपालन से मिलने वाला आशीर्वाद। धन्य शब्द उस मानवीय स्थिति को चित्रित करता है जिसमें मनुष्य ईश्वर के आशीर्वाद से आने वाली खुशहाली को महसूस करता है अथवा उस दैवीय पुरस्कार का अनुभव पाता है जो सदाचरण और धर्म परायणता से प्रस्फुटित होता है। श्रोताओ, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि प्रज्ञा कोई तानाशाह है जो अपने अनुयायियों को केवल आंसुओं और आहें भरकर जीने के लिए मजबूर करती हो। प्रज्ञा की प्राप्ति का यह अर्थ कदापि नहीं कि पारलौकिक जीवन में सुख पाने के लिए हमें इस धरती के लाभों से वंचित होना पड़ेगा। ऐसा कदापि नहीं है। ऐसा तो केवल हम मनुष्यों की सोच है जो सरासर गलत है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि प्रज्ञा की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। वस्तुतः श्रोताओं, प्रज्ञा और विवेक जो विशेष रूप से ईश्वर से मिली नसीहत से आता है वह वास्तव में भौतिक लाभ से बेहतर है। वह मनुष्य के जीवन को सदाचरण से भर देता है, उसे ऐसा प्रशिक्षण देता है कि वह कभी भी गलत रास्ते नहीं जाता। वह उसके जीवन को गुणकारी बना देता है और उसकी यह गुणवत्ता भौतिक लाभ और आर्थिक धन राशि से कहीं अधिक बढ़कर होती है। राजा सुलेमान ने प्रज्ञा के लिए विनती की थी और ईश्वर ने उसकी विनती पर ध्यान दिया। राजाओं के पहले ग्रंथ के 3 अध्याय के 9 पद में हम सुलेमान की प्रार्थना को इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। इस तरह श्रोताओं, राजा सुलेमान को यह ज्ञान मिल चुका था कि ईश्वर के साथ संबंध और सदाचारी जीवन से मिलने वाले ईश्वर के आशीर्वाद से बढ़कर कोई अन्य भौतिक लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, वे लोग धन्य हैं जो प्रज्ञा को संजोए रखते हैं।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी। कल करती चंचल नदियां, पेड़ पत्ते फूल कलियां, जल हो थल हो ऊंचा गगन हो, पंछी पवन या बहता दरिया हो, तेरी सत्ता के सब है खिलौने, तेरी सत्ता के सब है खिलौने, तेरी कोई ताह नहीं, तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को वेटिकन में बच्चों वाली माताओं को सहायता प्रदान करने वाले क्रिस्तीय संगठन आरके के सदस्यों का स्वागत कर उन्हें संबोधित किया। उन्होंने संगठन के अध्यक्ष डॉन जुजेप्पे बेतोनी के नेतृत्व में रोम आए सदस्यों का अभिवादन किया तथा विगत 30 वर्षों से बच्चों वाली माताओं के पक्ष में कार्य करने के लिए उनकी सराहना की। संगठन के नाम आरके पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, आरके शब्द मूल, शुरुआत या आदि का स्मरण दिलाता है और हम जानते हैं कि शुरुआत में या आदि में है प्रेम, ईश्वर का प्रेम। वह सब कुछ जो जीवन है, वह सब कुछ जो सुंदर है, शुभ है, सत्य है, वह सब वहीं से यानी कि ईश्वर से आता है जो प्रेम है। जैसे हृदय के अंतर में से माता के गर्भ से मानव जीवन प्रस्फुटित होता है, वैसे ही माता के गर्भ से यीशु उत्पन्न हुए जो देहधारी प्रेम है। संत पापा ने कहा, इसी परिप्रेक्ष्य में आरंभ में छवियां हुआ करती हैं और आपके लिए वे छवियां बच्चों वाली माताओं की हैं, जिनका आप स्वागत करते और जिनकी सेवा आप उदारतापूर्वक करते हैं। इन बच्चों और माताओं को आपने हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार के चंगुल से निकाला है, जो एक सराहनीय कार्य है। संत पापा ने कहा कि वे इस तथ्य से परिचित हैं कि माताओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी जरूरतों को पूरा करना कोई सरल काम नहीं है। इस कार्य क्षेत्र में अनगिनत समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, फिर भी इसे करने से जो आनंद मिलता है वह हर्ष, स्वतंत्रता, नव जीवन और गरिमा के द्वारों को खोल देता है। इसलिए आप अपने मिशन में दृढ़ता पूर्वक नित्य आगे बढ़ते जाएं। संत पापा फ्रांसिस ने समस्त कैथोलिक विश्वासियों से आग्रह किया है कि वे 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जारी सृष्टि के मौसम 2021 द्वारा आयोजित पहलों में सक्रिय रूप से भाग लें। लाउदातो सी अभियान ने सृष्टि के मौसम 2021 के लिए कई पहले आरंभ की हैं, जिनमें प्रार्थना सभाएं, संगोष्ठियां तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर वाद विवाद आदि शामिल हैं। साथ ही लाउदातो सी अभियान ने विश्व के समस्त ख्रिस्तानुयायियों का आह्वान किया है कि वे स्वस्थ गृह स्वस्थ लोग याचिका पर हस्ताक्षर करें तथा इसे प्रोत्साहन दें। यह याचिका नवंबर माह में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में भाग लेने वाले विश्व के नेताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। लाउदातो सी अभियान के वक्तव्य में कहा गया कि सृष्टि का मौसम 2021 ख्रीस्त के अनुयायियों के बीच संबंध का विशिष्ट समय है। यह ईश्वर और संपूर्ण सृष्टि के साथ संबंध स्थापित करने, मन परिवर्तन करने तथा सृष्टि की सुरक्षा के प्रति स्वतः को समर्पित करने का निर्णायक क्षण है। इसमें सृष्टि की सुरक्षा और मानव जाति के सामान्य धाम यानी कि धरती को पर्यावरण के ह्रास से बचाने के लिए प्रार्थना का आग्रह किया गया है। सितंबर माह के लिए गुरुवार को जारी अपने वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के समस्त कैथलिकों का आह्वान किया कि वे लाउदातो सी अभियान द्वारा आयोजित सृष्टि का मौसम 2021 के समारोहों में शामिल होकर अपने सामान्य धाम की सुरक्षा में अपना अनमोल योगदान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि हम किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं तथा एक सरल और सम्मानजनक जीवन शैली की ओर आगे बढ़ना चाहिए। स्लोवेनिया के ब्लेड शहर में यूरोप के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के नेताओं को संबोधित करते हुए गुरुवार को वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने यूरोप की धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का स्मरण दिलाया तथा मानवीय मूल्यों के पुनर्प्रतिष्ठापन का आह्वान किया। स्लोवेनिया के ब्लेड शहर में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक जारी सम्मेलन में शामिल यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि नेताओं को संबोधित कर कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि वर्तमान काल में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में घटते विश्वास का प्रभाव यूरोप पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि यूरोप ने सदैव मानव के मूलभूत अधिकारों के सम्मान में विश्वास किया है, किंतु दुर्भाग्यवश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर व्याप्त परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप इन मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, पारिवारिक प्रेम, जीवन के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, सहयोग और शांति की योजनाओं को धक्का लगा है। कार्डिनल पारोलिन ने सचेत कराया कि द्रुत गति से विकसित होते युग में विशेष रूप से मूल्यों में कमी आ जाने से अस्मिता के गुम हो जाने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि नए मापदंड पारंपरिक धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को गौण बना देते हैं, इसलिए मानव प्रतिष्ठा को अक्षुण रखने वाले मूल्यों को कायम रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने ख्रिस्तानुयायियों के बीच एकता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट पुस्तिका का प्रमोचन किया है। इस पुस्तिका का लक्ष्य स्थानीय कलीसियाई समुदायों और पुरोहितों में ख्रीस्त के अनुयायियों के बीच एकता के महत्व पर समझदारी उत्पन्न करना है। ख्रिस्तीय एकतावर्धक पुस्तिका का प्रमोचन नई दिल्ली में 31 अगस्त को भारत और नेपाल के लिए नियुक्त परम धर्म पीठ के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो जिरेली द्वारा किया गया। वे सब के सब एक हो जाएं कैथोलिक परिप्रेक्ष्य में ख्रिस्तियों के बीच एकता शीर्षक से जारी पुस्तिका भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा ख्रीस्त के अनुयायियों के बीच एकता की स्थापना के उद्देश्य से संकलित की गई है। इस पुस्तिका में प्रार्थना और संवाद द्वारा ख्रिस्तीय एकता हेतु द्वितीय वैटिकन महासभा के आह्वान की प्रस्तावना की गई है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।